नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा। अगले वर्ष मार्च महीने तक ध्वस्त हुए 600 पुल पुलियों का किया जाएगा निर्माण। निगरानी जांच ब्यूरो ने नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी की। 2,768 आरोपी शिक्षकों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला चीन से। और पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही छाया है घना कोहरा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की एक नई योजना की शुरुआत की है, के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम सड़कों को 5 साल मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे।
श्री चौधरी ने बताया कि अगले वर्ष मार्च महीने तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत ध्वस्त हुए 600 पुल पुलियों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में अन्य ध्वस्त हुए 400 पुल बनाने की कार्य योजना तैयार है। मंत्री ने बताया कि ग्रामीण सड़कों की जानकारी अब ऐप पर भी उपलब्ध होगी। विभाग इसके लिए ऐप विकसित कर रहा है और यह 15 दिनों में काम करने लगेगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया है। विभिन्न जिलों में 2,768 आरोपी शिक्षकों के खिलाफ 1,563 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश के 5,413 राजस्व गांवों में चकबंदी का काम पूरा हो गया है। वर्तमान में 5 जिलों के 39 अंचलों के 329 गांवों में चकबंदी का काम चल रहा है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में चकबंदी की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में 5 जिलों में जारी चकबंदी कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए नई योजनाओं पर काम होगा। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विभागीय बैठक में पटना, अरवल और जहानाबाद जिलों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने, पटना मुख्य नहर और आरा मुख्य नहर के पुनर्स्थापन और लाइनिंग कार्यों की प्रगति की विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही पदुआ और खरगपुर जलाशय को गंगा नदी के अधिशेष जल से भरने की योजना पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में कोसी मेचिन नदी जोड़ योजना की वर्किंग टीपीआर की प्रगति की भी समीक्षा की गई। राज्य की ग्राम पंचायतों में मनरेगा से बनने वाले खेल मैदान के लिए 6,400 जगह चिन्हित कर लिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारियों को 25 नवंबर तक खेल मैदान निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में पैक्स चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया कल तक चलेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 नवंबर तक निर्धारित है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। श्री कोविंद आज सासाराम में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। साथ ही वे पटना के रविन्द्र भवन में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। विधान परिषद के सचिव अखिलेश कुमार झा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन स्टेशन के पास एक ट्रेन को उड़ाने की साजिश करने के मामले में 3 आरोपियों को मोस्ट वांटेड घोषित किया है। इसमें नेपाल के बारा जिले के शमसुल हौदा, ब्रिज किशोर गिरी और पाकिस्तान के कराची के मोहम्मद साफी शामिल हैं। पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आसरा गृह की एक और बच्ची को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। इधर समाज कल्याण विभाग के निदेशक विजय प्रकाश मीणा ने बताया कि राज्य के सभी आसरा गृहों की जांच शुरू हो गई है। 10 दिनों में रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इस बीच भाकपा और बिहार महिला समाज की 5 सदस्यीय जांच टीम ने पीएमसीएच पहुंचकर इलाजरत बच्चियों का हालचाल जाना। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। प्रेस की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और उसे किसी भी बाहरी दबाव या असर से मुक्त रखने के लिए आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करेंगे। इस वर्ष मुख्य समारोह की थीम है प्रेस का बदलता स्वरूप। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इधर आज सुबह से प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज और सुपौल समेत 11 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। वहीं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा और कटिहार समेत 7 जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। वहीं हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा।
मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश के तापमान में अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के हिमालय की तराई के जिलों में सुबह के समय घना से बहुत घना कुहासा एवं उससे सटे जिलों में मध्यम से घना कुहासा, जबकि प्रदेश के शेष भागों में सुबह के समय हल्के स्तर का कुहासा अथवा धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है।
इधर कोहरे के कारण पटना हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कल 19 फ्लाइट की उड़ान प्रभावित हुई। प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान हाजीपुर और सहरसा की हवा बेहद खतरनाक बनी रही। हाजीपुर का AQI 335 और सहरसा का 300 दर्ज किया गया। वहीं पूर्णिया का AQI 249, पटना का 245 और अररिया का 243 रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने मौसमी बीमारियों को देखते हुए सभी राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि सांस लेने में तकलीफ से जुड़ी बीमारियां सामने आ रही हैं। इससे बचाव के लिए अस्पतालों को कोविड जैसी तैयारी रखनी होगी। मंत्रालय ने अस्पतालों से वेंटिलेटर और उपलब्ध दवाओं से संबंधित रिपोर्ट भी तलब की है। राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का सामना चीन से होगा। मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा। पिछले मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को एक तरफा मुकाबले में 13-0 से पराजित किया था। वहीं चीन ने जापान को 2-1 से शिकस्त दी थी। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें अब तक अपराजय हैं। अन्य मैचों में आज 12:15 मलेशिया का सामना जापान से और 2:30 कोरिया का मुकाबला थाईलैंड से होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल की नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं। उनकी उम्र 13 वर्ष है। वैभव का चयन अंडर 19 टीम में भी हुआ है। वे इस सत्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी सीनियर राज्य टीम के लिए भी चुने गए हैं। पटना से सहरसा के बीच चलाई जा रही अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब 19 दिसंबर तक किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने ये जानकारी दी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 23 नवम्बर तक विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं। पश्चिम चंपारण जिले के जयसिंहपुर के मिश्री टोला में पुलिस ने छापेमारी कर 10 किलो से अधिक चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में एक महिला भी शामिल है जो नेपाल की नागरिक है। कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के खैरा समेली से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 108 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 55,000 रूपये से अधिक मूल्य के जाली नोट के साथ नेपाल के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता। प्रभात खबर ने इसी समाचार को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जमुई में पीएम ने बिरसा मुंडा की जयंती पर 6,600 करोड़ रूपये की योजनाओं का तोहफा दिया। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीपीएससी से प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 38,900 शिक्षकों का हुआ चयन। दैनिक भास्कर ने शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पुलिस और तस्करों ने इसे कमाई का जरिया बनाया। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने T20 क्रिकेट श्रृंखला में भारत की दक्षिण अफ्रीका पर जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण किया जाएगा। अगले वर्ष मार्च महीने तक ध्वस्त हुए 600 पुल पुलियों का किया जाएगा निर्माण। निगरानी जांच ब्यूरो ने नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी की। 2,768 आरोपी शिक्षकों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। राजगीर में आयोजित एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला चीन से। और पछुआ हवा की रफ्तार तेज होने के साथ ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही छाया है घना कोहरा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।